السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 سے 167 تک کریں گے ان شاء اللہ. دیکھتے ہیں ہم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے آیت نمبر 163. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کی کتنی بڑی سزا ہے. تو امت مسلمہ کو یہ بات بتا دی گئی، ویسے تو علماء یہود کے لیے، کہ وہ انہوں نے چھپائی وہ باتیں جو ان کی تورات میں تھیں کہ وہ ان کو آگے پہنچائیں، مگر انہوں نے نہیں پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے ان کے اوپر ان آیات میں جو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر. اور پھر آیت نمبر 161 میں بھی کفر انہی کو کہا گیا جو چھپاتے ہیں، سب سے زیادہ تو ان کی طرف ہی اشارہ ہے کہ انہوں نے چھپایا، کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں چھپانا، لغت میں اس کا مطلب، ڈکشنری کا میننگ یہی ہے. تو ان کے اوپر تو سب کی ہی لعنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور اب یہاں سے امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے اب آگے بات لے کر چلنی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کو آگے پہنچانا ہوگا، تو ان کو ہر چیز کے اندر ہدایات دے دی گئیں، عقیدے سے لے کے، اخلاق سے لے کے، معاشرت سے لے کے، اور زندگی کے تمام جو فیزز ہیں ان میں آپ نے کیسے چلنا ہے وہ بتا دیا گیا. کیونکہ اب یہ سارے کام کرو گے تو تب یہ تم ذمہ داری نبھا سکو گے امت وسط کی. اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو یہ ذمہ داری بھی نہیں نبھا پاؤ گے. کیونکہ دیکھیں، یہ دین ان ٹوٹیلٹی آپ کو لینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے لیکن بس ہم نکلے میں دعوت دینے کے لیے. نہیں، آپ نے ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کو، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہے، چاہے وہ آپ کی انڈیویجول لائف سے ہے، چاہے آپ کی کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی آپ نے کیسے رہنا ہے اس سے متعلق ہے، اس سب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے رکھنا ہے اور ان کے مطابق چلنا ہے، تبھی آپ لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری نبھا پائیں گے. پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. تو آپ کو آگے بہت قسم کی ہدایات ملیں گی، آپ کی فیملی لائف سے متعلق بھی ملیں گی اور کئی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی ملیں گی ایسی آپ کی سوسائٹی سے متعلق چیزوں میں. تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی وہ عقیدے کی بات ہے کہ عقیدہ سب سے پہلے درست کرنا، اور اس میں عقیدہ توحید ٹاپ پہ ہے اور اسی سے متعلق یہاں پر بات ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھنا تمہارا الہ صرف ایک الہ ہی ہے. اس علم کو آگے پہنچانا تمہارا ذمہ ہے. اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کو بتانے والی سب سے زیادہ ہے، سب سے فرسٹ لسٹ میں پرائیورٹی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں تک پہنچائیں. جہاں کہیں پہ بھی آپ کو موقع ملے، پہلی چیز جس کا اظہار ہونا چاہیے وہ توحید ہے. الہ اللہ تعالیٰ کا ایک الہ کون ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کو ہم لا الہ الا اللہ کہتے تو ہیں، وہی یہاں پہ لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، اسی کو یہاں پہ کہا گیا. یہ کلمہ ہی ہے جو لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ جو ہے، یہ چار الفاظ، یہ ایز اٹ از سورۃ المحمد میں بھی ہیں. سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ ہے اور سورہ فتح محمد رسول اللہ بھی ہے. تو لا الہ الا اللہ کو ہی یہاں پہ کہا گیا, لا الہ الا ہوا وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے نا, وہی ہے الہ ایک. تو الہ کا جو لفظ ہے اتنا کمپریہنسو ورڈ ہے کہ اس کا کوئی بھی بدل جو ہے اردو میں نہیں ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا بالکل ایگزیکٹ سبسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ اردو میں ہے ہی نہیں. قریب ترین معنی معبود کا ہے کہ وہ جو عبادت کے لائق ہے. لیکن الہ میں صرف یہ بات نہیں, الہ میں اور بھی صفات ہیں جو اس میں شامل ہیں, جیسے کہ وہ ہستی جس کے پاس سب اتھارٹی ہو, سب اختیارات ہیں, وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ پلینر بھی ہے, وہ چلانے والا بھی ہے سب کو, وہ پالنے والا بھی ہے سب کو, ساری کائنات کو, جس سے انسان کے خوف اور امیدیں سب وابستہ ہوتی ہیں, جس پہ وہ توکل کرتا ہے, جس سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتا ہے. تو الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ٹاپ پرائیورٹی پہ ہوتی ہے, اور وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں, کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ الہ کہلائے. وہ بہت سارے شاعر اب شاعری میں کہہ دیتے ہیں میں تیری بندگی کرتا ہوں, یہ شعر کیا ہے؟ بندگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی, کوئی اور الہ نہیں کہلایا جا سکتا. اس لیے کہ پیدا کرنے والا صرف وہ ہے, سب کچھ دینے والا صرف وہ ہے, پالنے والا وہ ہے, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, جو تمہیں نظر آتا ہے اور جو نہیں نظر آتا, جو تم جانتے ہیں اور جو تم نہیں جانتے, جتنی بھی تمہاری ضروریات ہیں سروائیول کے لیے, وہ سب دینے والا, تم تک پہنچانے والا, وہ ایک اکیلا وہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لا الہ یہاں پہ کہہ دی گئی, نفی کر دی گئی, کوئی اور الہ نہیں ہے. کوئی بھی ہستی, چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ دنیا سے جا چکی, وہ الہ بننے کے لائق نہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ عقیدہ توحید اپنا سب سے پہلے سٹرونگ کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ پہچان, یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ کون ہے الہ جو اکیلا ہی ہے. اور ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے, مگر اس کی نشانیاں اس دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اگلی آیات میں یہی نشانیاں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں, جن سے آپ اس کو پہچان سکتے ہو کہ وہ اکیلا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری اپنی تو جانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, تمہیں نظر نہیں آتی, تم دیکھتے نہیں ہو. تو کہیں انسان غور تو کرے, چاہے اپنے آپ میں, چاہے آسمان میں, ستاروں میں, ندی نالوں میں, بارش کے برسنے میں, ہواؤں میں, بادلوں میں, کشتیوں میں, کہیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو آئے. کچھ تو دیکھو, کچھ تو آنکھیں کھولو. لا الہ الا ہوا, جہاں کہیں تم دیکھو گے تمہیں یہی پتہ چلے گا کہ کوئی اور نہیں ہے ہستی عبادت کے لائق مگر وہی, کیونکہ سب کچھ چلانے والا وہی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم, اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی تعارف شروع میں بھی, دیکھیں قرآن پاک میں جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, وہاں پہ بھی اسی طرح اپنا تعارف کروایا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا تو بڑا سخت ہے اور ایسے ہے اور ہمارا خدا تو بڑا لونگ ہے, تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں بتا دیا وہ رحمان اور رحیم, اور رحمان میں اتنی زیادہ رحمت ہے کہ انسان کی امیجنیشن بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی, اتنا زیادہ رحم. رحم میں بھی ایگزیجوریشن, اور رحمان یہ لفظ ہی بہت زیادہ کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے, اور رحم کے اندر کیئر بھی آ جاتی ہے, محبت بھی آ جاتی ہے, مرسی بھی آ جاتی ہے, کسی کا خیال کرنا یہ آ جاتا ہے. اور اس کی رحمت ہی ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں اتنا کچھ عطا کرتا ہے کہ جو ہم گن بھی نہیں سکتے, اور مسلسل دیتا جاتا ہے. इंसान मुसलसल उसकी नाफरमानी करता चला जाता है और वो मुसलसल नेमतों की बारिश किए जाता है, उसको अजाब में मुबतला नहीं करता, फौरन पकड़ नहीं लेता। तो जब वो इतना रहम करने वाला और रहीम, बार बार रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला, तो जो मुसलसल रहम करने वाला हो, जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, जो इतनी केयर करने वाला हो, फिर इंसान को नहीं चाहिए कि वो भी उससे मोहब्बत करे। इंसान को नहीं चाहिए कि वो सिर्फ उसकी इबादत करे, सिर्फ उसके आगे शुक्रगुजारी करे, उसके आगे माथा टेके और किसी और के आगे नहीं, और दुआ करे तो सिर्फ उससे करे और किसी और को ना पुकारे। एक एक नेमत उसने जो दी हुई इतनी कीमती है कि इंसान से जब वो एक नेमत भी छिनती है तब उसको एहसास होता है। और फिर लोगों को कहते हुए सुना, ये कितनी बड़ी नेमत थी, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। सेहत में से कोई एक चीज़ इस जिस्म में से ख़राब हो जाए तो इंसान को पता ही नहीं होता ये चीज़ें भी मेरे अंदर चल रही हैं, लेकिन जो ही ख़राब होती है तब इंसान को पता चलता है ये भी एक नेमत थी और कितनी बड़ी नेमत थी। एक ज़मीन ही हिलने लगे, लरजने लगे, जिसको हम कोई नेमत इतनी ख़ास नहीं समझते होंगे, शायद कभी गौर नहीं करते होंगे, लेकिन ज़मीन लरजने लग जाए तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, कुछ काम आराम से नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो अर्रहमान और अर्रहीम है कि इंसान को फिर भी मोहलत दिए जाता है, मोहलत दिए जाता है। अल्लाहु अकबर। तो तुम्हारा इलाह जो है वो ही है जो अर्रहमान और अर्रहीम है। तो जब तुम अपने ऊपर जो नेमतों की बारिश है उनको देखते हो ना, तो ये सोचा करो ये उस अर्रहमान और उस अर्रहीम की मेरे ऊपर मेहरबानी है कि उसने ये दिया हुआ। जिसको कहते हैं मेहरबान, वो मेहरबान है मेरे ऊपर। जब भी मैं दुनिया की नेमतों को इस्तेमाल कर रही हूँ, जब भी मैं इस दुनिया में सरवाइव कर रही हूँ, जब भी मैं हर तरफ से नेमतों में घिरी हुई हूँ, क्योंकि वो अर्रहमान है। ये नहीं कि मैं डिज़र्व करती हूँ, ये नहीं कि ये मेरा हक है, ये नहीं कि ये मुझे मिलना ही चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वो अर्रहमान और अर्रहीम है। और सबसे बड़ी जानते हैं उसने अपनी रहमत का मज़हर किस चीज़ को करार दिया कि यानी उसकी रहमत के जो इजहार है वो किस चीज़ से होता है कि उसने अल्लमल कुरान, कुरान सिखा दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये कुरान कितनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने अपना नाम अर्रहमान और उसके बाद फौरी तौर पे जो सबसे बड़ी रहमत उसकी है उसको मेंशन फरमाया है अल्लमल कुरान। शायद कभी इंसान इसको रहमत नहीं समझता, लेकिन ये कितनी बड़ी रहमत है, ये समझ आ जाए तो कभी भी इंसान इस कुरान से दूर ना हो। उसने तो फरमा दी कतबा अला नफ्सी अर्रहमा, मैंने अपने ऊपर रहमत लिख दी है। उसने लिख दी अपने ऊपर रहमत, यानी उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया रहमत। कोई और इंसान लाजिम नहीं कर सकता उसके, क्योंकि तूने रहम करना ही, उसने खुद अपने ऊपर लाजिम कर ली। उसकी रहमत उसके गज़ब के ऊपर गालिब है। तो उसकी रहमत को पहचानना है अगर, तो अपनी ज़ात में देखें और अपनी इर्द गिर्द ज़रा आँखें खोल के देखें, आपको हर तरफ उसकी रहमत ही नज़र आएगी। कभी पहचानने की कोशिश किया करें तो सर शर्म से झुक जाएगा और आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। या अल्लाह तो इतना मेहरबान, और मेरे हालात क्या हैं और मेरे करतूत क्या हैं, मेरा अमल क्या है, मेरी नाफरमानियाँ कैसी कैसी हैं और मेरे गुनाह कितने हैं, और तू स्टिल रहम पे रहम ही करता चला जाता है। वाकई ये सिर्फ तेरी ज़ात है जो ऐसी है, कोई और नहीं ऐसा हो सकता। अपने आप को देख ले, हम अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं फिर भी वो नाफरमानी की एक हद क्रॉस कर जाए तो वालदैन भी कहते हैं हमारा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, माँ भी कहती है तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। लेकिन वो रब कभी डिसोन नहीं करता अपने बंदे को। तो तुम्हारा इलाह, तुम सब का इलाहुकुम, तुम सब का इलाह वही है, चाहे वो बनी इसराइल थे उनका भी वही है, तुम्हारा भी वही है, चाहे कोई काफिर है उसका भी वही है, मोमिन है उसका भी वही है, अल्लाह ताला को मानता है उसका भी वही इलाह है। और जो नहीं मानता और जो मान ले और जो शिर्क करे साथ उसके, फिर भी तो उसका भी इलाह वही है। किसी के कह देने से इलाह बदल नहीं जाता। कोई काले को सफ़ेद कहे या सफ़ेद को काला कहना शुरू कर दे, कोई दिन को कहे नहीं जी दिन मैं मानता ही नहीं, ये तो रात है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये उसके दिमाग का खलल ही है, फिर उसके दिमाग में ही खराबी है और तो नहीं कुछ है ना। तो जो कहे कि कोई और भी शरीक है उसके साथ, तो ये उसके दिमाग की खराबी है और कुछ नहीं। इससे उसके साथ कोई शरीक बन नहीं जाता, वो अकेला ही है, वाहिद है। और अगर उसकी तौहीद को जानना है तो सूरह इखलास पढ़ लें, आपको उसकी तौहीद समझ में आ जाएगी। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द,
बेशक तखलीक में आसमानों की और जमीन की, इसमें क्या है, निशानी है। किसकी निशानी है, क्या निशानी है? खालिक की पहचान है, बनाने वाले की निशानी है। निशानी क्या चीज होती है? देखिए मैं आपको कोई चीज देती हूँ, आप उसको अपने पास रखती हैं, जाने लगी हैं आप, मैं आपको कहती हूँ ये लेको ये ले लो मेरी निशानी है अपने पास, तो वो मतलब क्या होगा? यानी अब आप जाएंगी तो जब आप मुझसे दूर होंगी तो आप उस चीज को देखेंगी, आपको मैं याद आ जाऊंगी, राइट? हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते लेकिन उसकी निशानियां हैं, वो कहता है ये मेरी निशानियां हैं, यानी आप इनको देखोगे ना तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, ये इसलिए है। इनके अंदर अल्लाह ताला ने जो भी फवायद रखे हैं वो रखे हैं, वो सारे अपनी जगह, मगर इनसे हमें पहली चीज क्या लेनी चाहिए कि अल्लाह हमें याद आ जाए, अल्लाह की पहचान हो। कैसे जमीन आसमान में अल्लाह की पहचान होगी? देखें आसमान, आसमान सिर्फ ये आसमान नहीं, हम कहें ये नीला आसमान, इसमें क्या पहचान? आसमान मीन समा कहते हैं वो बुलंदी को, आसमानों में फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो जमीन से बुलंद है, जिसमें चांद भी है, सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं और गैलेक्सीज हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिन तक इंसान अभी तक पहुंच ही नहीं सका। आप लोगों के लिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, कि क्या है कायनात में, कैसे ये सब निज़ाम है। तो सुभान अल्लाह, थोड़ी सी बातें सिर्फ आपसे शेयर करूंगी कि आज साइंस कहती है कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। एक तो हमारी ये गैलेक्सी है, मिल्की वे है इसका नाम, इसमें हमारा सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी, और इसमें और बहुत सारे सितारे सैयारे हैं। कितने सितारे हैं इसमें जो हमारा सिर्फ गैलेक्सी जो हमारी है इसमें, पता है कितने सितारे हैं? 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन सितारे हैं इसमें जो सिर्फ हमारी गैलेक्सी है। वो कहते हैं और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इसके अलावा, सुभान अल्लाह, उसमें कौन से सितारे सैयारे होंगे। और एक सितारा जिसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, वो सूरज है, या हम जिसके ऊपर बैठे हैं ये सितारा थोड़ी है, ये तो सैयारा है ना, तो प्लैनेट है। उस सन जो है वो एक स्टार है, ओके? आप सोचिए ये तो हमसे करीब है तो इतना बड़ा नजर आता है, इससे बहुत बड़े बड़े और सितारे मौजूद हैं इस कायनात में, लेकिन वो हमें बहुत छोटे छोटे सितारों की सूरत में नजर आते हैं क्योंकि वो दूर बहुत है। अब उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्स है ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स इसका फासला है, डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स जानते हैं कितने होते हैं? अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज ट्रेवल करे तो एक साल में पहुंचती है, वो लाइट ईयर होता है। उस स्पीड से कोई जाए तो 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे उसको, हालांकि लाइट जो है वो फास्टेस्ट है, जो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज है ना इंसान को, जो चीज अभी तक मिली वो लाइट है, उससे ज्यादा कोई चीज, आवाज भी देर से ट्रेवल करती है, लाइट उससे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। इतनी तेजी से भी अगर कोई ट्रेवल करे, अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ये कायनात पे इंसान गौर करने लगे ना, बिलीव मी ये आपको बताती है कि अल्लाह तू कितना बड़ा होगा। तेरी सिर्फ ये इतनी ये छोटी सी चीज है कायनात, तेरी एक मखलूक है, वो देखो कितने बड़े साइज की है कि 93 बिलियन ईयर्स लगे, लाइट ईयर्स, छोटे वाले ईयर्स नहीं, हमारे वाले लाइट इतना ट्रेवल करे और तब वो 93 बिलियन ईयर्स में पहुंचेगी। इसीलिए तो कई सितारे हैं वो खत्म भी हो जाते हैं, उनकी लाइट अब हम तक पहुंचती है, इतनी दूर है वो। आप देखें अल्लाह ताला की कायनात में बिलियन ट्रिलियन तो कोई चीज ही नहीं है। वो कहते हैं अगर इंसान सितारों को गिनना शुरू करे ना, गिनना शुरू करे, हर सांस पे एक सितारा गिने, तो आप मर जाएंगे लेकिन आप सितारे नहीं गिन सकते। सुभान अल्लाह, आसमान इतना वसीय, और जमीन, जमीन को आप गौर व फिक्र करो तो जमीन के अंदर इतनी निशानियां अल्लाह ताला की, कैसे इसके अंदर अल्लाह ताला ने समुद्रों के निजाम चलाए, कैसे इसके अंदर ये मट्टी है, हम इसके ऊपर चलते हैं फिरते हैं, इसके ऊपर पौधे उगते हैं, अंदर आग है इसके, इसके अंदर आग है, आग का गोला है इसके अंदर, कोर जो जमीन का है वो क्या है, फायर है। कभी सोचा आपने कैसे ये घूम रही है, कैसे ये तेजी से गर्दिश कर रही है, उड़ रही है, ये उड़ने का वर्ड इसके लिए सही है, चलने नहीं, उड़ रही है, इतनी तेज ये चल रही है, हमें कोई महसूस हो रहा है, घूम भी रही है, गोल गोल भी घूम रही है और भाग भी रही है, उड़ती जा रही है हवा में, कोई महसूस होता, कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह की। सुभान अल्लाह, वख्तिलाफ लैली वन नहार, और इख्तलाफ में रात के और दिन के, कभी दिन आ रहा है कभी रात आ रही, दिन आ रहा है रात आ रही, क्या ये बताता नहीं कि कोई खुदा एक ही है पीछे इसके, अगर एक से ज्यादा होते तो उसकी भी तो कोई मर्जी चलनी थी, वो कहता कि कभी तो वो कहता कि नहीं आज दिन नहीं, आज दिन के बाद रात के बाद दिन ही नहीं आना, रात के बाद एक और रात आए या दिन के बाद एक और दिन आना चाहिए, एक ही निजाम है जो करोड़ों साल हो गए चलता जा रहा है, वैसे कोई एक ही होगा ना पीछे। और फिर देखिए इख्तलाफ कैसा है, ये इख्तलाफ ये है, कभी दिन लंबा और रात छोटी, कभी रात छोटी दिन लंबा, इस तरह से करके ये इख्तलाफ चल रहा है ना, जैसे गर्मियों के अंदर आप देखें दिन कितने लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी, सर्दियों में दिन छोटे रातें लंबी, ये भी इख्तलाफ है, और रात स्याह काली, दिन सफेद बिल्कुल रोशन, इख्तलाफ है ना दोनों में, फिर भी कैसे आ और जा रहे हैं, कोई बटन नहीं है यहाँ पे, इंसानों को कर दिया जाता कि आप चलाओ ये दिन और रात, और आप चलाओ जमीन को, ये सारे मिलके नहीं चला सकते थे, लेकिन कि अगर किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जिसने ये कभी देखा ना हो और उसको ये दिखाया जाए तो वो हैरान हो जाएगा कि इतना बड़ा एक चादर सी आती है जैसे, और आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई और फिर दिन भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा, ऐसे नहीं एकदम ही स्विच ऑफ हो गया जैसे हमारे कमरों का होता है, लाइट बंद की अंधेरा घुप, लाइट चलाई बिल्कुल रोशन हो गया, फिर जब लाइट जलती हमारी आंखें भी नहीं खुलती क्योंकि अंधेरे से एकदम से लाइट आ जाए तो आंखें नहीं खुलती, लेकिन रात और दिन को कैसे अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह एक दूसरे में इतना स्लाइटली वो चेंज आ रही थी पता भी नहीं चलता। आप देखो कि अगर आप किसी खिलाड़ी को देखते हैं जिसने बड़ी महारत हासिल की है अपनी, उसमें बॉल जमीन पे मारता मारता ले जाता है और फिर वो अपने हुप में से एकदम ऐसे उछालता है और उसमें से गुजर जाता है, या एक खिलाड़ी है वो भागता है और वो गोल कर देता है, तो देखा है लोगों कैसे खड़े हो जाते हैं, खड़े होके तालियां बजाते हैं, चीखें मारने लगते हैं, या हम देखते हैं किसी को कि कोई बहुत ही ऐसा कोई कारनामा किसी ने किया, हम इतने मैस्मराइज हो जाते हैं, वाह क्या इसने ब्रिज बनाया, क्या इसने बिल्डिंग बनाई, जबरदस्त क्या भाई बात है, या कोई और किसी का देखते हैं कोई कारनामा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा इन सारों को देख के हम इतने मुतासिर होते हैं, खुशी से हम उछलने शुरू कर देते हैं, चीखें मारने लगते हैं, तो वो तो उसने छोटी सी एक स्किल हासिल की, उसने उससे अल्लाह की दी हुई एक नॉलेज से उसने कोई छोटा सा काम कर दिया और हम खुशी से कितने पागल होते, तो जिसने इस सारी कायनात को बना के हमारे सामने रख दिया, इतने इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं यहाँ पे, इतनी जबरदस्त चीजें हो रही हैं, इंसान ये सोचता नहीं है, वाह सुभान अल्लाह ये कैसे हो गया, होना तो ये चाहिए कि इंसान हैरान हो जाए, मगर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम रोज जो देखते हैं, रोज दिन आता है और चला जाता है, रोज रात होती है सुबह होती है, और रोज ये जमीन चल रही है, आसमान से सितारे हमें नजर आ रहे हैं, ये सब रोज हो रहा है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वरना अगर हमने ना ये देखा हो तो ये एक बहुत हैरत अंगेज बात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में फरमाया, एक दफा नहीं बार बार, आसमान और जमीन पे गौर व फिक्र करो। तो ये दुनियावी नॉलेज नहीं है, ये भी ऐन दीन का नॉलेज है। जब आप इस नियत के साथ इनमें गौर व फिक्र करते हो और ये पढ़ाई आप करते हो, ये स्टडी करते हो और उससे अपने अल्लाह को पहचानते हो, फिर वल फुल्क और कश्तियों में अल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफाउ नास, देखो कश्तियों को ही देखो, समुद्रों में चलने वाले ये जहाज कितना बड़ा फायदा देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इसलिए है ये ताकि नफा दे लोगों को, इसलिए अल्लाह ने ये बनाए कि ये जहाजों के जरिए इंसान कितने फायदे उठाता है। अगर आज आप अपने घर में देखें, कोई भी चीजें उठा के देखें, उसके ऊपर जरूर पढ़िएगा मेड इन कहाँ का है। आप देखेंगे कोई ही चीज शायद आपको ऐसी मिले जो जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां की है, शायद ही कोई चीज मिले, इक्का दुक्का। जितनी चीजें आपको नजर आएंगी उन पे मेड इन फलां कंट्री, मेड इन फलां कंट्री, आप देखेंगे कहां कहां से चीजें आई हैं ना, कहां कहां से चीजें आपके घर में मौजूद हैं, वो कैसे आई। स्टोरों में आप जाके देखें, आप कपड़े उठा लें, आप कोई खाने पीने की चीजों में से कोई उठा लें, आप देखेंगे उसके ऊपर पढ़ के देखिएगा मेड इन कहाँ की। जूते देख लें, आप कोई डेकोरेशन पीस देख लें, वो कहीं दूर दूर के मुल्कों से आया होगा, किस तरह आता है किसी जहाज में। फिर सोचिएगा कि अल्लाह तू ये जहाज ना बनाता तो ये दूसरे आपके हवाई जहाज तो नहीं इतना सामान उठा के ला सकते, ये तो नहीं ऐसा काम कर सकते, ये बहरी जहाजों का ही काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ये इस चीज को याद दिलाया कि इन कश्तियों को देखो। और पता नहीं पुराने जमाने में तो लोगों के इतने इतनी गुड्स नहीं आती होंगी कश्तियों में जितनी आज आती हैं। आप देख लें पहले जमानों के अंदर वो अपने शहर की चीजें या करीब करीब की बस्तियों की चीजें आ जाती थी, ऐसे नहीं होता था कि दूसरे मुल्कों की आ रही है। आज तो स्पाइसेस से लेकर आप छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक आप देख लें, सब बाहर से आते हैं, दूसरे मुल्कों से और बहरी जहाजों के जरिए। तो देखो बिमा यनफाउ नास, तुमने इस पे कभी गौर नहीं किया कि ये जहाजों को चलाने वाला कौन है, पानी में डूब जाए तो क्या हो। और आप देखिए सारी ट्रेडिंग जो होती है वो इन जहाजों से होती है, बहरी जहाजों से। इसी वजह से मुल्कों के लिए पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है कि कई मुल्क उन्होंने जंगें इसलिए की, मुल्कों का नाम नहीं लूंगी आप सबको पता होगा, जंग इसलिए की कि हमें सी पोर्ट नहीं लगती, हमें सी पोर्ट चाहिए, इसलिए वो दूसरे मुल्कों को इन्वेड करना चाहते थे कि वहां से हमें पोर्ट मिले। अगर पोर्ट समझते हैं बंदरगाह जो होती है वो मिले ताकि वहां से फिर हमारी ट्रेडिंग हो, क्योंकि जिन मुल्कों में ये पोर्ट्स होती हैं वहां पे ट्रेडिंग हो सकती है। ऑयल कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह बताएं, हर मुल्क में तो ऑयल नहीं पैदा हो रहा, ऑयल कैसे आता है, इन बहरी जहाजों से आता है जिनसे आपकी गाड़ियां चलती हैं, फिर आगे और कितने काम होते हैं आप बताएं। ऑयल ही बंद हो जाए तो आपकी तो सारी ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो, जहाज भी चलने बंद हो जाएंगे, तो ये ऑयल लेकर आते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो सुभान अल्लाह, आप गौर तो करें इसमें, चीजें हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, गाड़ियां भी शिप्स में आती हैं दूसरे मुल्कों से, आपके पास जो गाड़ी है आपने सोचा कभी कहाँ से आई। तो नहीं ये तो दुनियावी चीज है, दुनियावी नहीं है, आप इसके पीछे तो जाएं, आपको यही तो है मोमिन की पहचान क्या होती है, वो जाहिर में गुम नहीं होता, वो उसके पीछे जाके उस हस्ती को पहचानता है जिसने ये सारा कारनामा किया। सुभान अल्लाह, तो आप एक पहिए से ले लें, आप एक गाड़ी ले लें, एक जहाज ले लें, आप देखेंगे आपकी अकल दंग रह जाएगी। अल्लाह तू ये जहाज अगर ना चलने देता समुद्रों में तो हमारी तो जिंदगियां ही चल नहीं सकती थी। आज ये जो तरक्कियां आज हमने की हुई हैं, जो सारा हमें सामान कितने आराम से मिल जाते हैं, या अल्लाह ये क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से आ रही है। बीमा यनफा उन्नास, ये नहीं कहा कि जानवरों को इससे फायदा होगा, जहाज इसलिए नहीं चले हैं इंसानों के फायदे के लिए। सुभान अल्लाह, क्या इंसानियत फिर इस एहसान को मानती है या नहीं? इंसानियत इसको पहचानती है कि नहीं? लोग रोज जा रहे हैं, जहाजों पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपने भी कभी जहाज देखे होंगे, या लोग देखते हैं आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, दिन और रात को कौन नहीं देख रहा? इनके लिए तो कोई बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, इनके लिए तो पैसे भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सब लोग देखते हैं। मगर क्या बात है कि गफलत कितनी है कि देख के भी रब को नहीं पहचानते, बनाने वाले को नहीं जानते, कभी नहीं सोचते कि किसने ये ऐसा खूबसूरत आसमान सजा दिया, किसने इस जमीन को फैला दिया। रात और दिन किसी के करने से तो आ जा रहे होंगे। मैं कुछ ना करूं सारा दिन तो मेरे घर का तो काम चलता नहीं है, खाना मेरा खुद नहीं पक जाता, सफाइयां खुद नहीं हो जाती, बर्तन खुद से नहीं धुल जाते, कुछ भी नहीं खुद से होता अगर मैं ना करूं तो। जाहिर है अगर छोटे से घर का निजाम नहीं चल सकता किसी के कुछ किए बगैर, तो कायनात या बगैर किसी के करने से चल रही है इतनी बड़ी और इतनी हार्मनी से दिन और रात? क्या इतनी अकल है सूरज को कि मैंने गरूब होना है और मैंने तुलू होना है, और सर्दियों में मैंने जरा ठहर के तुलू होना है, गर्मियों में मैंने जल्दी आ जाए करना है? अच्छा हम अपने वो घड़ियां रखते हैं ताकि हम देखें कि भाई सूरज आज कितने बजे फजर है, आज कितने बजे मगरिब है, रोज हमें चेक करना पड़ता है। और सूरज को क्या, उसके पास कौन सा क्लॉक है, उसको कौन चला रहा है, उसका कौन ड्राइवर है, उसको कौन से अलार्म से पता चलता है कि मैंने उठना है और चलना है? खुद सोचो, यही तो सोच है जो अल्लाह उभारता है कि सोचो इंसान। तुम्हें देखिए जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? जानवरों तो सूरज दिन है रात है, या जमीन चल रही है नहीं चल रही, आसमान है क्या, उसको नहीं कुछ पता, उसने बस खाना है पीना है सो जाना है बस। नहीं इंसान, अगर तुम भी यही करोगे तुम्हें और जानवर में क्या फर्क रह गया? अकल अल्लाह ने इसलिए ही तो दी है। सोचो इसको, किस अलाम ने सूरज को बताया कि आज देखिए अब हमारा दिन, फॉर एग्जाम्पल है कि अब आपके सर्दियों से आप गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपका जो सूरज का टाइम है वो एक एक मिनट पीछे होता जा रहा है, फजर एक एक मिनट पहले होती जा रही है। कौन है जो सूरज को जाकर बताता है 1 मिनट पहले आज हो गया, आज 1 मिनट अर्ली और हो गया? ये है वो जो 1 मिनट है, उसके पास कौन सा क्लॉक है? अगर रूप होते वक्त उसको कौन बता रहा है? अच्छा फासला तो उसने उतना ही तय करना है। सर्दियों में क्या वो अपनी स्पीड तेज कर देता है, और गर्मियों में क्या स्लो चलना शुरू हो जाता है? क्या होता है? कुछ तो हम इंसान सोचे इस बात को, इस पे गौर और फिक्र करे, अगर साइंटिफिकली इसको अंदर देखना तो वो और तरीके से देखना, उस तरह से गौर और फिक्र करे, तो आपको पता चलेगा, जितना इसको पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कितना प्रिसाइज है ये निजाम, यानी टू द पॉइंट के डेसिमल्स तक प्रिसाइज है। एक डेसिमल के अंदर पॉइंट के आगे 0000 आगे लगा दें तो उसके बाद भी आप कहेंगे ना, तो वो भी डिजिट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उससे निजाम चेंज हो जाएगा। इतनी सी भी कहीं चेंज आती है ना सारा निजाम उलट पुलट हो जाएगा। जरा सा फॉर एग्जाम्पल, जरा सा सूरज को करीब कर दें जमीन के तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इतनी गर्मी शदीद हो जाएगी जमीन नहीं चल सकती, जमीन उसमें जाके गिर जाएगी। ये जो डिस्टेंसेस अल्लाह ताला ने रखे हुए ना, सुभान अल्लाह, ये डिस्टेंस भी इतना बड़ा फैक्टर है कि जिससे इंसान अल्लाह ताला को पहचान सकता है, कि अल्लाह इतना एग्जैक्ट, इतना प्रिसाइज डिस्टेंस, ये अल्लाह अगर थोड़ा करीब हो जाता तो तब ये जमीन उसमें गिर जाती, अगर थोड़ा दूर हो जाता तो जमीन उड़ के कहीं और चली जाती। साइंस के लिहाज से देखना तब भी समझ आती है, जिस वक्त ये साइंस ने नहीं अभी तक बातें जानी थी उस वक्त, और लिहाज से देखना तब भी समझ आती थी। तो लेकिन सोचने के लिए वो ध्यान चाहिए कि इस एंगल से भी सोचो। फिर वमा अनजलल्लाहु मिनस समाई मिमाइन, फिर देखो जो उतारा अल्लाह ने आसमान से बारिश को, अब वो बारिश जो है उसके लिए कितना कुछ काम करता है, तो बारिश होती है वो भी। मैं कहती हूँ जितना आज आप साइंस के जरिए अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं, शायद पहले उतना नहीं था, जितना आज आपको आपकी अकलें हैरान हो जाती हैं कि अल्लाह ये क्या, इतना कुछ चल रहा है? समंदर भी काम में लगे हुए हैं उसके लिए, बारिश बरसाने के लिए, हवाएं काम में लगी हुई हैं, बादल काम में लगे हुए हैं, क्या क्या अल्लाह ताला, सूरज काम में लगा हुआ है, तो क्या क्या अल्लाह ताला के निजाम है जो चल रहे हैं, तो तब बारिश होती है, कहीं से और से नहीं आ रही बारिश। फअहया बिहि अल-अर्ध बाद मौतिहा, फिर देखते नहीं है जमीन को अल्लाह कैसे जिंदा करता है उसकी मौत के बाद, डेड होती है बिल्कुल जमीन, कैसे हरी भरी हो जाती है। अल्लाह दिखाता है कि तुम ये ना सोचना कि मार के फिर उसके बाद जिंदा नहीं वो कर सकता, जैसे उसने जमीन को जिंदा कर दिया बारिश के जरिए, इसी तरह तुम्हें भी एक दिन जिंदा कर देगा। एक बारिश और भी है जो अल्लाह के हाँ बरसेगी वहां पे, जिसे इंसान के जिस्म उगेंगे वो जिंदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के इस निजाम से ही सोच लो कि उसके लिए मुर्दा को जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, जमीन को देख लो, क्या क्या पहचान रहे हैं आप इसमें बताएं। जब आप ये देखते हैं तो क्या क्या चीज की पहचान आती है, अल्लाह ताला कितना कुदरत वाला है। देखो कुदरत है ना, ये इतने बड़े निजाम को चलाना, आसमान है, जमीन है, जमीन तो छोटी चीज है, जो आसमान है वो तो कायनात है, उसको चला रहा है, पता नहीं वहां पे क्या क्या मखलूकात होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। और क्या क्या चीजें, हम तो अपनी दुनिया और अपने आप को ही कुछ समझे बैठे हैं, वो क्या चीजें हैं, क्या दुनियाएं हैं और कितनी दुनियाएं हैं हमें नहीं पता। अल्लाह तेरी कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह तू कितना बड़ा होगा जो तूने इतनी वसीय कायनात बना दी, अल्लाह तेरे पास इल्म कितना होगा कि तूने इतने खूबसूरत निजाम को बनाया। वरना देखिए, अगर अल्लाह के निजाम के अंदर इतनी परफेक्शन ना होती तो आप ऊपर आसमान की तरफ देखते, हाय कभी किसी दिन कोई चीज किसी से टकरा रही है, किसी दिन कुछ हो रहा है, कहीं कोई धमाका हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आग लगी भी है कहीं, तो फिर तो ये नजर आता, कंप्लीट हारमोनी है ऊपर, सुकून है ऊपर, आपकी जमीन पे ये इंसान ने फसाद मचाए हुए हैं, ऊपर आप देखें कोई फसाद है, कोई जंगे हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये तो नहीं लड़ रही आपस में, क्योंकि एक चलाने वाला कोई है जिसने ना सिर्फ इनको पैदा नहीं सिर्फ करके छोड़ दिया, कॉन्स्टेंटली इनकी निगरानी भी तो कोई कर रहा है। तो तू कितना अच्छा निगरान है अल्लाह, कि करोड़ों सालों से ये चल रही है। हाँ हम तो जब से देख रहे हैं ऐसा ही देख रहे हैं, आपसे पहले भी ऐसा ही था, तो अल्लाह खुद कितना प्यारा निगरान है। और फिर हर चीज के ऊपर जिसकी नजर हो, जाहिर है अगर कोई ऐसा खुदा है जिसकी आज नजर इस पे है तो वो इधर से गाफिल हो जाता तो पीछे तो कुछ और ही हो जाए। हम घर से 4 मिनट के लिए निकलते हैं तो पीछे बच्चे उधम मचा देते हैं, घर खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, कहते हैं हम 4 मिनट घर, 10 मिनट के लिए मैं निकलती हूँ और तुमने घर का क्या हाल किया, ऐसा होता है ना। तो अगर वो खुदा होता जिसकी आज नजर जमीन पे है तो बाकी सियारों सितारों का तो बुरा हाल हो जाता, वो सितारों से सैयारों की तरफ देखता, उनको संभालता, तो जमीन पे कुछ और हो जाता। तो इसका मतलब वो कि ऐसा खुदा है, यानी अगर आप इस सारी चीज को भूल जाए ना, सिर्फ इन चीजों के ऊपर तवज्जो करके इनसे अल्लाह को तलाश करें तो आप कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा खुदा है जिसकी निगरानी में हर चीज है, और इसका मतलब है कि उसको कोई नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि अगर नींद आती होती तो ये तो सारे खत्म ही हो जाते, किधर बारिश बरसनी है, बादल किधर जाने हैं, क्या होना है, वो तो खुदा सोया पड़ा होता तो क्या हो जाता। तो इसका मतलब वो सोता नहीं है, वो गाफिल नहीं है, और इसका मतलब वो एट अ टाइम हर चीज को देख सकता है, उनको कंट्रोल भी किए हुए। अच्छा अगर कोई ऐसा खुदा होता कि मसलन वो तो कहता है कुछ तो हो कुछ और रहा है, कोई उसकी सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, तो फिर क्या होता। इसका मतलब वो कोई ऐसा खुदा है जिसका पूरा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, ये कोई चीज टस से मस नहीं हो सकती, कोई सूरज आज नाराज होके नहीं बैठ सकता, मुझे आज बड़ी नाराजगी, मैंने नहीं आज निकलना, कल ऐसा क्यों हुआ था और फिर वो ऐसा क्यों हुआ था, बस मुझे ये बात बुरी लग गई, वो भी हमारी तरह रूठने बैठ जाता, हम नाराज हो के कितने दिन बैठ जाते हैं घर वालों से, तो वो ऐसे बैठता तो हो जाता काम फिर हमारा, तो जमीन चलना बंद कर देती एक दिन, आए तो मैं बड़ी गर्म हो गई हूं, सूरज मेरे से बहुत ज्यादा मेरे ऊपर अपनी धूप फेंक रहा है, मैं तो आज नहीं चल रही, क्या होता फिर, वो कहती मैं तो घूम घूम के थक गई हूं अब, तो इसका मतलब कोई है ना जिसके कंट्रोल में है, जिसके हुक्म ऐसा है कि किसी की मिजाल नहीं चूचरां करने की, पहचाने इनसे। और फिर वो कोई ऐसा इल्म वाला ही होगा जिसको इतना पता होगा कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इतनी लाइट यहां से यहां इस वक्त पहुंचेगी, ये इस वक्त चलेगा, इस वक्त ये गरूब होगा, इस वक्त दिन चढ़ेगा, इस वक्त रात होगी, गर्मियां ऐसे आनी चाहिए, सर्दियां ऐसे आनी चाहिए, इसमें ये मौसम के फल होंगे, इसमें ये मौसम। वो कोई इतना ही इल्म वाला होगा तो फिर ही उसने ये सारा किया है ना। जब एक एक शय है इतनी सही चल रही है तो वो कोई बनाने वाला बहुत ही उसका इल्म होगा ना। समझ आ रही है ना ये बात? फिर देखिए हर चीज को हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ पीछे उसके कोई हिकमत होती है, कोई पर्पस होता है। पर्पसलेस कोई चीज नहीं, बेमकसद कोई है नहीं। इसका मतलब बड़ी वो हिकमतों वाला होगा, उसको पता होगा कि मैंने ये चीज इस तरह बनानी है तो ये मकसद पूरा करेगी। अगर शेर को बनाया तो उसके वैसे दांत दिए जैसे उसने खाना है, अगर हाथी को बनाया तो उसके दांत डिफरेंट है, उसने तो पौधे और वो घास फूस खानी है, उसने वैसी चीज। देखो कैसे हर चीज को छोटी डिटेल में भी दाके देखें तो वो एक बामकसद चीज है। अगर हमारी नाक है ना तो इसके अंदर छोटे छोटे बाल भी हैं तो उनका भी एक मकसद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। अब इसकी डेप्थ में जाके देखें तो आपको पता चले, सुभान अल्लाह, ये आंखें बनाई है ना आंखों के, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। ये जो आप आंखें ब्लिंक करते हैं तो ये जो ब्लिंक आप कर रहे हैं, अल्लाह, इस आयत के ऊपर ही हम चलते रहे ना तो ये 3 घंटे तो दूर की बात है, पूरा दिन लग जाएगा। कि ये जो आंख आप सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर आप ब्लिंक करते हैं तो ये इसको आम जुबान में क्या मैं कहूँ कि लुब्रिकेंट जैसे, कोई ऑयल्स, कोई ऐसी चीज ये ऐसे लेकर आते हैं, ये आपके जो पपोटे हैं, ये जो आईलिड्स हैं, ये ऐसे लेकर आते हैं जिससे आंख ड्राई ना हो, वरना हवा है ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। आप देखते हैं इसमें हल्की हल्की नमी रहती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुराने पाक में, अल्लाह हु अकबर, सिर्फ आसमानों जमीन का ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया सनूरीहिम आयातीना, हम अनकरीब इनको दिखाएंगे अपनी निशानियां, फिल आफाक, आफाक में इस कायनात में, व फी अनफुसिहिम, और इनके अपने नफ्सों में, हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, इनका अपना आप पुकार उठेगा, ये चीख उठेंगे अल्लाह ये तो हक है। अल्लाह ताला कहता है हम ऐसे दिखाएंगे। और वाकई आप अपनी जिस्मों में गौर करें या कायनात में गौर करते हैं, चलो कायनात में नहीं गौर होता, अपने जिस्मों को ही देख लो, अपने आप को ही देख लो कि हम क्या चीज है। 37.2 ट्रिलियन सेल्स है एक एवरेज बॉडी में, अब कोई इससे बड़ा होगा तो या इससे छोटा होगा इसके काम होगा, एवरेज एक बंदे की बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। सुभान अल्लाह, देखिए एक इंसान सांस लेता है दिन में 30,000 दफा सांस लेता है, कोई चाली सांस चल रही है, कोई कोई है ही जो, हम तो नहीं जोर जोर लगा लगा के तो सांस लेते, अगर हमारे करने से ही चलती होती तो जो कोई मर जाता क्यों नहीं ले लेता सांस, उसकी सांस क्यों बंद हो जाती। ये जो मैंने आपको बताया कि आंख हमारी ब्लिंक करती है 30,000 दफा ब्लिंक करती है दिन में, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। हमारे गुर्दे जो ये डायलिसिस करते हैं 40 दफा करते हैं, 40 टाइम्स करते हैं दिन में, समझ ले साफ कर रहे हैं। डायलिसिस वैसे कराने जाओ तो कितना महंगा होता है, वो डायलिसिस वाला जो काम है ये हमारे गुर्दे कर रहे हैं। क्या कहोगे आप इसको, 7,500 लीटर खून दिल रोजाना पंप करता है, तो आप इसके लिए फैक्ट्रियां लगा लो, कहाँ से आपको ऐसी फैक्ट्री मिलेगी जो आपका खून ही साफ करती है। या हम खुद करने लगे तो सारा दिन हम अपना ही खून साफ करते रहेंगे बस, फिर और काम तो हो गए हमारे, अपने आप से नहीं पहचानते अल्लाह को, देखते नहीं हम। हम तो सो जाते हैं, जब हम सोए हुए हैं, अच्छा इतना दिन में हमने काम किया, थक गए, जिस्म में दर्द हो रहा है ऐसे, अब हम सो गए, सो के जब हम उठते हैं हम फ्रेश हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, दर्दें सब खत्म हो गई, थकावट दूर हो गई, खाना भी हजम हो गया। आप तो सोए हुए थे, ये सारा काम कौन कर रहा था, हमारा जिस्म कर रहा था, जिस्म को किसने कहा, आपने बताया था उसको, हमें तो ये भी नहीं पता काम करना कैसे इसने, हमें नहीं पता मेदा कैसे काम करता है, हमें नहीं पता दिल कैसे काम करता है। आप सबने पढ़ी भी है ये सारी मेडिकल साइंस, पढ़ी भी जिसने हो, जानता भी हो, तो कर सकता है ये क्या खुद जाके? सांस का ये एक निजाम खुद नहीं चला सकते? और ये इतने 37.2 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन जा रही है, अगर नहीं जाएगी मर जाएंगे ये, कैसे पहुंच रही है हमें क्या पता, और पहुंच रही है। इसे अल्लाह को नहीं पहचानते तुम? अल्लाह ताला कहता है ना, तुम्हारे नफ्सों में दिखाऊंगा निशानियां ऐसी कि तुम पुकार उठोगे कि वो हक है, वाकई अल्लाह है। इसे तुम्हें याद नहीं आता? सब कुछ फायदा उठाते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होश। वह बसफीहा मिन कुल्ली दाबतिन, फिर देखो कि इस जमीन पे कितने जानवर उसने फैला दिए, यहाँ पे जितने जानवर आप देखो, या तो वो इंसानों के फायदा दे रहे हैं उसके खाने पीने के लिए हैं, या उसकी सवारियों के लिए काम आ रहे हैं, या उसके सामान ले जाने के लिए काम आ रहे हैं, या किसी ना किसी तरह इंसान को सर्व कर रहे हैं, और कईयों का हमें नहीं समझ आता, तो उनका भी कोई पर्पस है। अल्लाह ने सब जानवर फैला दिए, वो कहते हैं अब इंसानों ने डिस्कवर कर लिए 20,100,000 यानी 20 लाख स्पीशीज। ये तो सिर्फ स्पीशीज है, यानी स्पीशीज मतलब ये कि अनवा अनवा जानदारों की, जानवरों की इतनी अनवा उन्होंने डिस्कवर कर ली है। तो सोचें मसलन है ये तोते, ये एक नौ एक स्पीशी हो गया, अब उसमें कितनी तरह के तोते हैं, चिड़ियां इतनी कितनी तरह की हैं, चींटियां वो कितनी तरह की हैं, उनका एक जहान ही है अपना। इस तरह की एक मछली डिस्कवर हो गई है, आए दिन तो वो कहते हैं हमने ये डिस्कवरी कर ली, तो 20 लाख तो अभी स्पीशीज ही डिस्कवर इनसे हुए हैं, और उनकी आगे नस्लें बताएं कितनी होंगी, एक एक की अल्लाह निगरानी कर रहा है। सबसे बड़ी इस वक्त दुनिया के अंदर जो मखलूक है वो ब्लू वेल है, वो अपनी पूरी जिंदगी में इतना ट्रेवल करती है, इतना तैरती है, इतना सफर करती है, 10 दफा चांद पे जाके वापस आ जाए, इतना सफर करती है अपनी पूरी जिंदगी। सुभान अल्लाह, एवरी डे उसका वजन बढ़ता है, कितना बढ़ता है, हम बहुत खा लें तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, 1-2 पाउंड 3 पाउंड बढ़ जाएगा, एक दिन में बहुत भी किया तो उसका कितना बढ़ता है, 200 पाउंड बढ़ता है हर दिन उसका वजन। अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी मखलूक इस जमीन के ऊपर ही, तो अल्लाह ताला ने कहा इसके ऊपर हमने फैला दिए, हर तरह के जानवर, रींगने वाले कीड़े भी हैं, उड़ने वाले परिंदे भी हैं, तैरने वाली मछलियां भी हैं, जंगलों में कितने हैं, वो तशरीफ रिया, और देखो हवाओं का गर्दिश करना, ये हवाएं गर्दिश करती हैं, कभी देखे वो कहते हैं फलानी तरफ से हवा आ गई, वो पोलर वर्टिक्स आ गई, वो इतनी पोल से आ रही हवाएं, वो इतनी सर्द है कि उसकी वजह से सर्दी आ गई, कभी गर्म हवाएं चल पड़ती हैं, कभी हवाएं बादल लेकर आ जाती हैं, कभी कहाँ की हवाएं कभी कहाँ की। ये हवाओं का गर्दिश करना, तो कोई हवाओं को चलाता होगा ना, और हवा ने देखो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, घेरा हुआ है ना, इसे नहीं पता चलता कि इसका मतलब अल्लाह ने, अल्लाह का ये अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम उसके कंट्रोल में है, क्योंकि उसकी एक मखलूक है जो उसने हमारे इर्द गिर्द, बिल्कुल हमारे गिर्द उसने यानी कायम की हुई है, हम उसकी ताकत में है, उसकी कुदरत में है। आप देख लें हवा जब चलती है सिर्फ कहने को हवा ही होती है, हल्की फुल्की चले तो मजा आता है, अगर कहीं लू की फॉर्म में चलने लगे तो क्या हाल हो जाता है, वही हवा के थपेड़े ऐसे लगते हैं कि जैसे आग है, और वही हवा तेज शदीद चलने शुरू हो जाए, पिछले दिनों चल रही थी जब, तो यकीन जाने कि सिर्फ गाड़ी से किसी स्टोर तक जाना मुश्किल हो रहा था, ऐसा लग रहा था हवा उड़ा के ले जाएगी। तो हवा कभी इतनी अनकंफर्टेबल हो सकती है, कहने को सिर्फ हवा ही तो है, देख भी नहीं सकते इसको, लेकिन ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह के जो लश्कर है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के लश्करों को, अल्लाह के जुनूद को सिर्फ वही जानता है, ये अल्लाह के लश्कर है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो घिरे हुए हैं अल्लाह ताला की निशानियों से, आंख वो चाहिए जो इन निशानियों से कोई सबक ले ले, वरना ऐसा नहीं है कि हाँ कहाँ है खुदा, हमें तो पता ही नहीं चलता। वी नीड अ साइन। जब कोई इस्लाम की तरफ नया नया आता है तो सबसे ज्यादा लोगों के मुंह से क्या सुना है कि हम इस्लाम लेकर आए लेकिन जो भी कोई खुदा है हमें कोई साइन दिखाए। ओ भाई इतनी आंखों को खोलो, साइन तो हर तरफ है। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता तुम तो साइन से घिरे पड़े हो, और कौन सा तुम्हें और साइन चाहिए? तुम कायनात में ही गौर कर लो तो साइन से भरी पड़ी है। क्या ये निशानियां नहीं है अल्लाह की? हवा किसके हुक्म से चल रही है? ये सिर्फ एक फोरकास्ट हमें कर देते हैं, वो हवा आ रही है जा रही। क्या इनमें से कोई हवा को कंट्रोल भी कर सकता है? क्या आज हमारे मुल्क में ये वाली हवाएं ना आए? ये वाली हमें पसंद नहीं, बहुत ज्यादा इसे सर्दी हो जाएगी, तो उनको रोक के दिखा लेना। अब इतना निजाम, अब इतनी तरक्कियां जो कर ली हैं, तो अब हवाओं को रोक लिया करें। ऐसी तूफानी हवाएं भी चलती हैं, क्या वो फिर समुद्रों में हरिकेन्स आ जाते हैं? कैसे आप देखें वो तबाही लेकर आते हैं, फिर किस लिए, किस तरह हवाओं के ही चक्कर है ना। और जब हवाओं के ऐसे झक्कड़ चलते हैं, वो समंदर भी आ जाते हैं जमीन के ऊपर। तो हवा को मामूली बात नहीं है। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्द, और बादलों को मुसख्खर किया हुआ, कंट्रोल में है, दरमियान में है आसमान के और जमीन के। ये किसने रखे? में बादल अगर हल्का हो तो फिर ऊपर ही चढ़ जाए, नजर ही ना आए, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर भारी है पानी से तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? बिल्कुल बैलेंस्ड है, बीच बीच में चल रहा है। आप स्नो होती देखते हैं, अब स्नो हो रही है, हाय बादलों ने इतना कुछ उठाया हुआ था कि हमारे यहाँ पे 2-3 फुट स्नो हो जाती है कभी। तो क्या वो बादल हैं? क्या इन्होंने इतना कुछ उठाया हुआ है? वो स्नो जब जमीन पर पड़ती है तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, उसको किसकी सफाई मुश्किल हो जाती है। और कहाँ इतने बड़े खित्ते तक वो स्नो पड़ी हुई है, बादलों से आई ना। बारिश भी जब होती है तो कितनी कितनी इंचेस हो जाती है बारिश। फिर आप हैरान होते हैं कि ये बादल इतना पानी उठाए हुए थे, और फिर भी गिर नहीं पड़े, कितना लोड उठाया हुआ हमने। सुभान अल्लाह, देखिए ये सारे फिर किसी के हुक्म पे तो चल रहे हैं ना। कहाँ जाके बारिश बरसानी है, कहाँ पे नहीं बरसानी, कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं पहुंचना, किस टाइम पे पहुंचना है, कितने कतरों ने गिरना है, किसी किसी ने तो इसकी प्लानिंग की होगी या नहीं, तो पता चलता है ना वो बेस्ट प्लानर है। कोई प्लानर है इसका? कोई कुदरत रखता है, पावरफुल है कोई, उसकी प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त है, इल्म भी है उसके पास, हिकमतें भी हैं उसके पास, कुदरतें भी उसके पास, ताकतें भी उसके पास है। वो देख भी रहा है कि अच्छा अगर एहतसाब ना हो किसी चीज का तो क्या चीज ठीक चल सकती है, यानी कुछ पूछने वाला ही ना हो, कोई देखने वाला ही ना हो। इसका मतलब हर चीज को वो उसने एक हिसाब से रखा और वो उसके मुताबिक काम कर रही है। अगर उसको ये डर ना हो कि मेरे पास कोई भी देखने वाला नहीं है, मैं जो मर्जी करूं, तो फिर तो कोई भी कहना ना सुने। सब चीजों को पहचान है कि एक रब है, उसका ये हुक्म है, और वो उसके हुक्म के मुताबिक इसका मतलब काम कर रहे हैं। उनको शऊर है इस चीज का, समंदर क्यों नहीं चढ़ आते जमीन के ऊपर? कभी देखा समंदर कितने बिफरे हुए होते हैं, क्यों नहीं जहाजों को डुबोते फिरते हर जगह जहां पे भी? समंदर कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक, यानी एक मैसिव चीज है। पानी, आपने अगर नियाग्रा फॉल देखा हो, पानी के अंदर कितनी हद तक ताकत आ जाती है वो आप देख सकते हैं जब गिरता है कहीं से। तो ये पानी ही है समंदरों में, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? इनको ये स्मूथली चलाने वाला कौन है? या आप बीच पे बैठे हैं तो आपको मजा आ रहा है, वही वाइल्ड हो जाए तो क्या करें? इसका मतलब वो किसी के कहने में है, हर कोई उस किसी का कहना मान रहा है, और वो एक ही है जिसका सब कहना मान रहे हैं, क्योंकि सब हार्मनी से काम कर रहे हैं, यानी सब कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। समंदर ये नहीं कहता मुझसे पानी ना उठा के लेके जाओ, मैंने नहीं अपना पानी देना, ये नहीं कहता मैंने जहाज नहीं चलने देने, सूरज ये नहीं कहता मैंने नहीं यहां पे चमकना, लेकिन आप बारिश ये नहीं कहती मैंने बरसना नहीं है, और बादल ये नहीं कहते हम अपनी मर्जी करेंगे, हमने नहीं पानी बरसाना, हम क्यों इतना पानी लेके बोझ लेके चले? सब किसी के फरमा बरदार है, कायनात फरमा बरदार है, और तुम्हें क्या सबक देती है फरमा बरदारी का। और ये बताती है कि देखो मिलजुल के सब काम कर रहे हैं किस लिए, एक अल्लाह के कहने पे। हालांकि समंदर अलग चीज है, हवाएं अलग चीज है, बादल अलग चीज है, लेकिन सब एक का हुक्म मान रहे हैं। कोई एक ही हस्ती होगी ना, अगर एक से ज्यादा होती तो कुछ, कोई कुछ क्या था, कोई कुछ क्या था। हर कंपनी में भी देखें ऊपर जाके बॉस एक ही होता है, ये नहीं होता कि सारे बॉस बन के फिर रहे हैं। उसके नीचे हो सकते हैं उसके कारिंदे, जो कि कितने भी हों, 4 हों 6 हों 10 हों, उनके आगे आगे और लोग हो सकते हैं, मगर ऊपर जाके तो एक ही होता है। जैसे कंपनीज के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई आईटी का है, कोई अकाउंट्स का है, कोई एचआर है, कोई कोई, सारे कोऑर्डिनेशन से चल रहे होते हैं ना, तब उस कंपनी का निजाम चलता है ना। इसी तरह अल्लाह की कायनात में कोई बारिश का निजाम है, कोई हवाओं का निजाम है, कोई जमीन का निजाम है चलने का, कोई आसमान में कोई निजाम है, कोई बारिश का निजाम है, ये सारे निजाम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। वो नाराजगियां कर करके नहीं बैठे हुए, को उधर मुंह करके बैठा है, को उधर करके बैठा है, उसने इसने नहीं मेरे बात करनी, मैंने नहीं आज उसकी माननी, मैंने नहीं है उसके साथ कोई अपना ताल्लुक रखना। अगर ऐसे होता तो हर एक अपना अपना कुछ कर रहा होता, नहीं, ऑल आर ओबीडियंट और सब मिलके चल रहे हैं उस एक रब की ओबीडियंस में। ये बातें तो जाननी, इसके अंदर तो अभी कोई दीन की बात ही नहीं आई है, तो सीधी सीधी सिर्फ निशानियों से इन्फर की गई हैं बातें, अखज की गई हैं यहीं से। हम बताएं इसके अंदर तो अभी तो कोई बात भी नहीं पड़ी, और क्या इन चीजों से अगर इंसान अकल इस्तेमाल करे क्या नहीं समझ आती। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया आयात लिकौमी याकिलून, आयात है इसमें निशानियां उस कौम के लिए जो अकल रखती है। आप कहते हैं ये फलां, ये इतना पीएचडी है, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो ये है वो है, और उसके बाद उसको अल्लाह की पहचान ही नहीं, वो एक खुदा का इनकार करने वाला है, तो वो कोई अकल वाला नहीं है। उसके पास इल्म हो सकता है, अकल नहीं है, क्योंकि अकल वाला इन निशानियों से अल्लाह को पहचान जाता है। कौमी याकिलून, इसका मतलब हर एक को समझ नहीं आएगी, उस कौम को ही समझ आएगी जो अकल रखती है, उन लोगों को ये बात समझ आएगी। वो अनपढ़ अकलमंद है जिसने इन चीजों को देख के अल्लाह को पहचान लिया, और वो पीएचडी आदमी बेवकूफ है, अकल वाला नहीं है, जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना चाहे उसने कितना इल्म क्यों ना ले लिया। समझ आए? तो अकल डजंट मीन कि आपके पास डिग्रियां कितनी, अकल मीन्स कि आपको अल्लाह की पहचान कितनी है।